ओम शांति। ये हमारा इस शिविर का लास्ट सेशन है, लेकिन टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ है और इसमें हम हूबहू होंगे अपनी संस्था से फेस टू फेस ब्रह्मा कुमारी जी। संस्था कब आरंभ हुई, इसके संस्थापक कौन थे, कैसे सेवाओं का विस्तार हुआ और अब वो इस शरीर में नहीं है, लेकिन ये संस्था फिर भी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। यहाँ पर कैसे सिस्टम चलता है, मेनली जो लोगों का क्वेश्चन होता है, खर्चा कैसे चलता है, इनके गुरु कौन है, टीचिंग्स को क्या है इनकी, तो ये सारी आज आपको जानकारी देंगी। हमारे बीच में आदरणीय शीलू दीदी जी हैं, हम बहुत करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। थोड़ी अच्छी से ताली बजाइए। वैसे तो हर आत्मा अपना रोल बखूबी यहाँ पर बजा रही है, लेकिन शीलू दीदी का बाल्यकाल से ही विशेष रोल रहा है। करीब 12 वर्ष की आयु से आप इस ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े, बॉम्बे से आपने ये ज्ञान लिया और अपनी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने के पश्चात 69 में आपने एक जो यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग होती है वो की और उसके पश्चात आप संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। भारत के कई स्थानों पर आपने सेवाएं दी, जैसे कर्नाटक में गए, नेपाल काठमांडू में भी आपने अपनी सेवाएं दी और देश विदेश में भी आपने इस आध्यात्मिकता की जागृति को लाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। आपकी विशेषता, आपने जो इस ईश्वर विश्वविद्यालय की एक विशेष सेवा जिसके स्वरूप में आज आप आए हैं, योग शिविर, और वो आपके द्वारा आरम्भ किए गए हैं। इसके जो भी लेक्चर्स, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कर्मों की गुह्य गति, ये टोटल पहले आप ही सुनाते थे, धीरे धीरे ये फिर क्लासेस डिवाइड हुए, लेकिन इन सब का श्रेय आपको जाता है। हाँ, आप ताली बजा सकते हैं। अच्छी अनेक टीवी चैनल्स के माध्यम से भी, शुरू में जागरण आता था, जी टीवी था, उसके माध्यम से आपने अनेक प्रवचनों के द्वारा अनेक आत्माओं की ज्योति जगाई है। स्वभाव से आप बहुत शीतल शांत प्रिय और बहुत मीठा स्वभाव आपका है, बहुत निरंकारी हैं और इस हेडक्वार्टर में आप अपनी वर्तमान समय अनेक वर्षों से, 70s में आपने यहाँ पर रहना शुरू किया, तब से आप अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। जो भी हमारे नॉन बीकेस के ग्रुप आते हैं उनको भी आपकी क्लासेस के द्वारा लाभ होता है और विशेषकर जब हमारे बीकेस भाई बहने वर्ष में एक दो बार हमारे हेडक्वार्टर में माउंट आबू में आते हैं, शांतिवन में आते हैं, आप बहुत डीपली योग के गहरे अनुभवों के द्वारा परमात्मा कैसे हमारा साथी बन करके हमारी पालना करता है, कैसे हर पल हम उसको अपने साथ रख सकते हैं, इस योग की और गहराई क्या है, ज्ञान की क्या गहराई है, आप अपने अनुभव के द्वारा सबको लाभान्वित करते रहते हैं। तो अभी हम सुनेंगे हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी से इस संस्था का परिचय। ओम शांति।
ओम शांति। सभी कहेंगे प्यार से ओम शांति। सभी शांति प्रेमी प्रभु प्रेमी आत्माएं हो, इस शांति के स्थान ज्ञान सरोवर में पिछले 3 दिन से आप बहुत कुछ सुन रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो और कई बातें आपको अच्छी भी लगी होगी, नई भी लगी होगी, आश्चर्य कराने वाली भी लगी होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ से आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, ऐसे ही कहेंगे ना, अच्छा अनुभव लेके जा रहे हैं या कुछ और भी अनुभव है, हा? अच्छा ही अनुभव है। और 3 दिन कैसे एक विद्यार्थी जीवन होता है जिसमें केवल विद्या ग्रहण करने का ही लक्ष्य होता है, वो भी आपने कुछ अंश तक अनुभव किया। अपना विद्यार्थी जीवन आपको याद आ गया होगा, क्योंकि उसमें श्रवण ही करना होता है विद्यार्थी जीवन में। तो यहाँ सुबह से लेकर के रात्रि तक आपकी अलग अलग क्लासेस से आपने बहुत कुछ श्रवण किया, बहुत कुछ सुना पाया। लेकिन आपको अवश्य ये उत्सुकता होगी कि ये संस्था शुरू कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, और अब इतनी जो 82 वर्षों से ये कार्य चल रहा है वो कैसे चल रहा है, कैसे प्रगति हुई। जो बहन जी ने भी बताया, दिन दुगनी रात चौगनी गति से इतना आगे बढ़ रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। क्योंकि कोई यहाँ पर कोई बॉस, कोई डिक्टेटर, कोई इस प्रकार से दिखाई तो दे नहीं रहा है, जो चला रहा हो कैसे चल रहा है ये सब, कैसे हर एक अपना अपना कार्य कर रहा है, और इतना ये गहरा ज्ञान ये कहाँ से मिला है। कोई शास्त्र नहीं हाथ में, कोई किताब नहीं हाथ में, लेकिन अवश्य इसके पीछे कोई राज है, और वो राज क्या है, स्वयं परमात्मा। परमात्मा ने ही आज से 82 वर्ष पूर्व 1936 में यह एक महायज्ञ रचा। अगर इसको महायज्ञ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूनिवर्सिटी कहें, विश्व के लिए एक विद्यालय कहें, तो भी गलत नहीं है, या एक अलौकिक परिवार बनाया तो भी सही होगा। तो क्या है इसकी कहानी और कैसे शुरू हुई? ये शुरू होती है पिताश्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं। कैसे इनों को अनेक दिव्य साक्षात्कार हुए, जिन साक्षात्कारों के बलबूते पर आज यह इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा है। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, क्या है उनकी जीवन कहानी, इनको हम अपना गुरु नहीं मानते, कई समझते हैं शायद ये ब्रह्मा कुमारियों के गुरु है, लेकिन न हम इनको गुरु कहते हैं और न ही हम इनको भगवान मानते हैं। परमात्मा तो एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सदा शिव है, कल्याणकारी है, परम धाम के वासी है, लेकिन जिसके माध्यम से परमात्मा ने ये ज्ञान दिया उसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा को रचयिता माना गया है। आदि पिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा पिता, जगत पिता ब्रह्मा को मानते हैं। कोई समझते ब्रह्मा तो चौमुखी है, चार मुखों वाला है, वो तो देवता है, और आप एक मनुष्य को कैसे ब्रह्मा कहते हो। लेकिन आपने जो ब्रह्मा के चित्र देखे होंगे, मंदिर भी देखे होंगे, उनको दाढ़ी मूछ आदि दिखाते हैं ना, पुष्कर गए होंगे, वहाँ पर भी जगत पिता ब्रह्मा का ही मंदिर है, या खेड़ ब्रह्मा है गुजरात में, वहाँ भी है। तो एक बूढ़ा मनुष्य दिखाते हैं, दाढ़ी मूछों वाला। अब दाढ़ी मूछ माना मनुष्य रूप में है, देवता रूप में नहीं है। तो मनुष्य रूप में है, लेकिन उनके माध्यम से परमात्मा ने एक नई सृष्टि बनाई। तो फिर कई पूछते हैं, ये आपके कौन लगते हैं? तो हम कहते हैं ये हमारे अलौकिक पिता हैं। हर एक क्या अपना शरीर का पिता होता है, वो सबका अपना अपना है, वो तो एक है, लेकिन आत्मा का भी पिता है, जिसको हम पारलौकिक पिता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं। पर तीसरा है प्रजा पिता, सारी प्रजा का पिता, अलौकिक जन्म देने वाला। लौकिक जन्म तो देहधारी पिता ने दिया, और पारलौकिक पिता परमात्मा की तो हम सभी अनादि अविनाशी संतान आत्मा रूप में हैं। लेकिन जो अलौकिक रूप से एक नया जन्म दिया, उनको हम कहते प्रजापिता ब्रह्मा। तो कौन थे प्रजापिता ब्रह्मा और कैसे उन्होंने एक बीज डाला, एक बीज अपने तन का, मन का, धन का, अब एक बीज रोपा और आज वट वृक्ष की तरह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में 137 से भी अधिक देशों में अपनी शाखाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, पिताश्री ब्रह्मा बाबा का पूर्व नाम दादा लेखराज था, लखीराज बाबू इस नाम से आप बहुत ही प्रसिद्ध जौहरी थे, हीरों का व्यापार करते थे, हीरों के जेवर बनाते थे और कलकत्ता में आपकी बहुत बड़ी दुकान थी और आप स्वयं हैदराबाद सिंध में रहते थे, सिंधवर की कहते हैं हैदराबाद के आप थे, लेकिन एक बहुत साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ हैदराबाद सिंध के भी एक गांव में। आपके पिताजी तो एक स्कूल मास्टर थे, तो साधारण परिवार में जन्म लेकर कैसे एक ही जीवन काल में इतनी ऊंचे स्थिति तक पहुंचे जो हीरों के व्यापारी बन गए और हीरों के जेवर बनाते थे बाबा, इनके पार्टनर कलकत्ता में रहते थे और आप अक्सर करके जैसे सेल्समैनशिप होती है तो आपके जो ग्राहक थे वो राजा महाराजा थे उस समय के। तो 1876 में आपका जन्म हुआ और 1936 में लगभग 60 साल की उम्र थी उनकी जब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके पहले आप बिजनेसमैन थे, बहुत ही सफल व्यापारी थे और कलकत्ता में तो खास अंग्रेज वाइसशिप आते थे, भारत में अंग्रेजों का राज्य था और राजाओं महाराजाओं का भी राज्य था। तो कैसे ये राजाएं महाराजाएं वो बाबा के पास आते थे, बाबा को अपने महलों में बुलाते थे क्योंकि रानियों के लिए जेवर लेने होते थे तो बाबा उनके पास जाते थे और कैसे बाबा को कहते थे कि आपके अंदर जो रॉयल्टी है, जो इतनी महानता है विचारों में चाहे व्यवहार में, वो हम राजाओं में भी नहीं है, ऐसे बाबा को की तारीफ करते थे। और जितना ही वो धनी थे उतने ही वो दानी भी थे, वो दान करते थे और वो सुखी परिवार था उनका। 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे और लगभग सबका विवाह हो चुका था और जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हो रही थी एकदम फ्लरिशिंग बिजनेस थी उनकी। लेकिन बाबा को कुछ धीरे धीरे वैराग्य आने लगा, नाम तो बहुत कमा लिया था, जितने ही धनी थे दानी थे समाज में उनका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उतना ही बहुत बड़े भक्त थे और खास करके विष्णु की भक्ति करते थे, कट्टर वल्लभाचारी पक्के वैष्णव होते ना वो थे। श्रीनाथ द्वारा में आप लगातार आते रहते थे, भोग करवाते थे, बहुत कुछ दान पुण्य करते थे, कोई भी उनके द्वार पर जाता तो कभी भी हाथ खाली नहीं जाता था, यहाँ तक कि गरीब माँ बाप को अपनी बेटी की शादी करनी होती थी तो भी बाबा के पास जाते थे और बाबा उनको सहर्ष दहेज के लिए भी धन देते थे, जेवर देते थे, मानो दान करते थे, बहुत दानी विचारों के थे। लेकिन विष्णु की भक्ति करते थे, विष्णु ही उनके इष्ट थे। तो कैसे, एक भक्ति तो बहुत करते थे लेकिन अंतर में एक बहुत बड़ी खोज थी, कोई ऐसा शास्त्र नहीं होगा जो बाबा ने पढ़ा नहीं होगा, कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं होगा जहाँ बाबा दर्शन करने न गए हो, यहाँ तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी। तो इसीलिए वो तो सब कुछ किया, अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। वैसे तो कोई एक गुरु ही करता है तो समझता मेरा बेड़ा पार हुआ, मैंने गुरु किया हुआ है, लेकिन बाबा ने 12 गुरु किए। कई कहते ना गुरु किया है तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, बस एक गुरु किया है मैंने, लेकिन बाबा ने 12 गुरु किए अपने जीवन काल में। क्यों? क्योंकि बाबा के अंदर एक जिज्ञासा थी सत्य को पहचानने की। सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, जीवन क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं जगत में, जाना कहाँ है, क्या करना है, इस संसार में इतना दुख क्यों है, क्या भगवान ने ऐसे ही दुख की दुनिया रची है, वो तो सुख का सागर है। अगर दुख की दुनिया रचनी थी तो रचने की जरूरत ही क्या थी, यानी इस प्रकार के प्रश्न। तो फिर क्या कभी सुख इस संसार में हो ही नहीं सकता है, ऐसे ऐसे प्रश्न बाबा अपने गुरु से करते थे। अब गुरु से उनको जितना संतोषजनक जवाब चाहिए था उतना मिल नहीं पाया। तो इसी प्रकार बाबा शास्त्र भी बहुत पढ़ते थे, तो भक्ति भी बहुत करते थे, बिना नागा। जब भी आप ट्रैवल करते थे ट्रेन में भी, तो भी नहा धोकर के बिना मुंह जूठा किए बाबा गीता का पाठ करते थे, बिना नागा। घर में भी जहां भी जाए सवेरे सवेरे सबसे पहले गीता का पाठ करते थे। परंतु ये खोज उनकी जारी थी। और कैसे, एक दिन की बात है जो अचानक कैसे उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, वो इसलिए था क्योंकि बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, उनके सामने आके जैसे दर्शन दिए, बाबा देख करके हैरान हो गए। अपने इष्ट के दर्शन करके बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए, उनको लगा मेरी भक्ति का मुझे फल मिल गया है। लेकिन विष्णु ने उनको बहुत अजीब सा वरदान दिया। वैसे जब भी किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं ना, तो अधिकतर जो वरदान मिलते हैं अपने इष्ट से वो यही होते तथास्तु, माना आपकी इच्छा पूरी होगी, वैसा ही होगा तथास्तु। लेकिन जब विष्णु उनके सामने आए तो वरदान क्या दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे समान हो। और बाबा ने देखा कि विष्णु के कई रूप उनके सामने आए, अलग अलग मंदिर है, अलग अलग तीर्थ स्थान है, और जहां विष्णु के की मूर्तियां हैं, तो एक एक मूर्ति जैसे उनके सामने आती गई, शंख चक्र गदा पद्मधारी, अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग मुकुट, ये सब एक ही विष्णु के चित्र उनके सामने आते गए। और उनको ये एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। अब जब दर्शन करके थोड़े नीचे आए, वापस आए, तो बाबा के सामने वही दृश्य घूम रहे थे। और जो वरदान मिला अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो मन में प्रश्न उठे, मैं इन जैसा कैसे हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, मैं तो इनका सेवक हूँ। हाँ, यही मानते ना भक्ति में, गुरु नानक ने भी यही कहा, नानक नीच नानक। हाँ, तो अपने आप को उसी रूप में देखा। तो बाबा भी यही कहते थे, मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं तो चरणों की धूल हूँ, भक्ति में ये मानते हैं भक्त लोग। और ये कैसा वरदान मिला कि तू मेरे समान हो, मैं जैसे कैसे हो। अब इस प्रश्न का जवाब कहाँ से उनको मिले, तो अपने गुरु के पास गए, गुरु से ये प्रश्न किया कि ऐसा कैसा वरदान मिला मुझे, क्योंकि नहीं तो वरदान मिलता तथा अस्तु पर, बाबा को तो कोई इच्छा थी नहीं इस दुनिया की इस संसार की कोई इच्छा नहीं थी, भरपूर थे, परिवार सुखी था, कोई कमी नहीं थी, बस सत्य को जानने की इच्छा जरूर थी। तो ये जो वरदान मिला, तुम भी मेरे जैसे हो, इसके कारण बाबा के मन में बहुत प्रश्न उठे। तो जब गुरु से ये बात कही तो गुरु ने उनको बहुत अच्छा उपाय बताया, क्योंकि किस कैसे का क्यों का ये गुरु भी कैसे समझे। तो गुरु ने कहा, हो सकता है इसमें कोई राज होगा, और क्या राज होगा, हो सकता है भगवान को आपसे कुछ ऐसा काम कराना है जो ईश्वर ही कर सकता है, और वो काम आपसे करवाना है, इसलिए हो सकता है आपको ये वरदान दिया, तत्त्वम तो मेरे जैसे हो, तो आपसे कुछ बड़ा काम कराना होगा। तो बाबा को मन में आया, भगवान को मेरे से काम कराना है, ऐसा क्या काम है जो भगवान को मेरे से कराना है, तो वो कैसे पता चले कि क्या काम कराना चाहते, क्या कार्य। तो गुरु ने उनको राय दी कि आप एकांतवास में चले जाओ, और एकांतवास में आप विष्णु का ही ध्यान करो, क्योंकि उनके ही शिष्य, उनके ही ये भक्त थे, और आपको फिर और कुछ अनुभव होगा, और भगवान आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे, कलकत्ता हैदराबाद आते जाते थे, तो बाबा को आया मैं बनारस जाऊं। बनारस में उनके मित्र की कोठी थी, बहुत बगीचा था, उनको लगा मैं वहां थोड़े दिन गंगा के किनारे भी जाऊं, वहां भी तपस्या करूं और एकांत वास लूं, ताकि मुझे कुछ और प्रेरणा मिले कि भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि बाबा जैसे बनारस गए, बनारस में बाबा बहुत एकांत में रहते थे, अपने मित्र की कोठी में रहे कुछ समय, तो रोज संध्या काल में बाबा बगीचे में एक पेड़ के नीचे विष्णु का ध्यान करते थे, कि अचानक उनको एक महाविनाश का, भयंकर भयंकर महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा कि तीन रूपों से इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश हो रहा है, और बाबा कोने में कोने से सारी दृश्य देख रहे हैं। बाबा ने तीन तरीके से कलयुगी दुनिया का महाविनाश होता हुआ देखा साक्षात्कार में। एक तरफ बाबा ने देखा अणु युद्ध, एक एटम बॉम्ब ऊपर से गिरा, और जहां गिरा वहां आग ही आग, आग ही आग, और आग की लपेटों में सब के सब जलकर राख हो गए, ये बाबा ने देखा। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने दूसरा दृश्य देखा, जिसमें सिविल वॉर देखा, गृह युद्ध, लोग आपस में लड़ करके मर रहे हैं। अणु युद्ध में तो आग में जलकर मरे, लेकिन गृह युद्ध में आपस में लड़ झगड़ के मर रहे हैं, एक दो पर बंदूकें चला रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं, और देखते देखते बाबा ने देखा खून की नदियां, चारों ओर खून ही खून, खून ही खून, सब डेड बॉडीज ऐसे पड़े हैं। एक सिविल वॉर खत्म होने के बाद क्या दृश्य होता है वो बाबा ने देखा। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने तीसरा दृश्य देखा, जिसमें ये प्राकृतिक आपदाओं से विनाश हो रहा है, पांचों ही तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत, सारे ही पंच तत्व एक साथ अपना कांड दिखाने लगे, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आंधी तूफान, कहां पर अतिवृष्टि, कहां पर एकदम सूखा, पता नहीं क्या क्या बाबा ने देखा। और देखते ही देखते बाबा ने देखा जैसे कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट। तो बाबा ने देख करके बहुत, बाबा रोने लगे, ये क्या देख रहा हूं मैं, हे भगवान ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो फिर भगवान दुनिया बनाई क्यों, एक प्रश्न उठेगा ना, कोई चीज को खत्म ही करना है फिर बनाता ही क्यों है, अगर खत्म ही करना है तो हे भगवान ये दुनिया फिर बनाई क्यों। और हे भगवान, ऐसा विनाश तो हमने कभी पहले नहीं देखा, क्या ये दुनिया से खत्म हो जाएगी? फिर भगवान इसके बाद क्या होगा? बस मन में प्रश्न ही प्रश्न उनके उत्पन्न होते रहे। अभी दूसरे प्रश्न उठे, अब उनका जवाब कौन दे? लेकिन बाबा को एक विश्वास था कि हमको कुछ और प्रेरणा मिलेगी, तो वो विष्णु का ही ध्यान करते रहे। पर विनाश का दृश्य देख करके बाबा को बहुत बड़ा वैराग्य आ गया, वैराग्य इस संसार से, जैसे कि ये सब नष्ट हो रहा है, सब कुछ खत्म। फिर थोड़े समय के बाद बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा अखंड ज्योति का एक महतत्व। जैसे आकाश तत्व हम देखते हैं ना, वैसे सुनहरे लाल प्रकाश का एक महतत्व, और चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, और उसी प्रकाश के बीच में एक वृक्ष, परंतु उल्टा झाड़, और वो वृक्ष था छोटे छोटे सितारों का, ये आत्माओं का वृक्ष बाबा ने देखा परम धाम के अंदर, आत्माओं की दुनिया में, और उनका बीज ऊपर वो परमात्मा, और कैसे एक वृक्ष के रूप में सारी ईश्वर की रचना, उल्टे झाड़ के रूप में वो रचना देखी। और फिर क्या देखा कि उस दुनिया से धीरे धीरे वो आत्माएं, सितारे नीचे उतरने लगे नीचे, और देखते देखते बाबा ने देखा वो धीरे धीरे सितारे नीचे आ रहे हैं, और जैसे धरती पर पहुंचे, तो धरती पर पहुंचते ही एक एक सितारा एक देवी का रूप या देवता का रूप धारण करता जा रहा है, और देवी देवताएं चारों ओर सृष्टि पर विचरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य बाबा ने देखा, इतने बाग बगीचे, इतने सुंदर वातावरण, फूल झड़ने और शहनाइयां बज रही है, चारों ओर खुशी का माहौल है, उस जैसा सुख बाबा ने उसके पहले कभी नहीं देखा था, इतना सुख का वातावरण। तो बाबा को आश्चर्य लगा कि ये क्या दुनिया है, ये क्या मैं देख रहा हूँ। और बाबा देखते ही रह गए, और देखते देखते बाबा ने देखा एक महल सोने का, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं दीवारों पर, इतना सुंदर महल था। और जैसे अंदर में देखा, वहाँ लक्ष्मी नारायण, विश्व महाराजन महारानी गद्दी नशीन अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और सब उनका स्वागत कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो महल से बाहर आए, और बाहर बगीचे में विचरण करने लगे। इतना सुंदर दृश्य, जिसमें प्रकृति का चरम सौंदर्य जितना कहा जाए वो गलत नहीं होगा, ये बाबा ने देखा। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई उनको, आकाशवाणी में क्या शब्द सुने, जैसे उनको आदेश मिल रहा हो कि अभी आपको क्या करना है। तो आकाशवाणी में उन्होंने सुना, भगवान उनको कह रहा है, लखीराज उठो जागो। वो तो जाग ही रहा था, परंतु अज्ञान की नींद से उठो जागो, बहुत ही शीघ्र इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, और उसके बाद एक नई सतयुगी दुनिया आनी है। इस कलयुगी दुनिया के विनाश के बाद एक सतयुगी दुनिया आनी है, जिसका निर्माण तुमको करना है, ये तुमको करना है, तुम ही ब्रह्मा बनके इस सृष्टि का निर्माण करोगे। अब ये साक्षात्कार हुआ, अब आकाशवाणी जैसे हुई, और उसके बाद बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया, ये किसने आकाशवाणी की, आवाज कहाँ से आया, किसने कहा, और ये जो कहा इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। परंतु इतना जरूर समझा कि इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आएगी, और ये दुनिया तुमको बनानी है। अब जब ये शब्द सुने तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया, ये दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा, और वो जो पतित दुनिया या कलयुगी दुनिया, वो दुनिया कहाँ जाएगी, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। और ऐसी दुनिया मैं बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी शक्ति है जो मैं ऐसे बनाऊं, हे भगवान हमें कुछ और भी बताइए क्या करना होगा उसके लिए। लेकिन अभी वो फिर जब मौका आए तब तक तो इतना ही बाबा को समझ में आया कि ऐसी दुनिया हमें बनानी है, अभी कलयुग खत्म होगा तो ऐसी दुनिया आएगी और वो दुनिया हमको बनानी है। तो बाबा को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन बाबा को ये जरूर आया कि अब हम यहाँ बहुत समय नहीं रह सकते, अब हमको अपने पार्टनर के पास जाना पड़ेगा, उनको उस बताना पड़ेगा, उनसे कुछ राय लेनी होगी, इतना समय मैं यहाँ आ गया हूँ, घर भी जाना है, कलकत्ता भी जाना है, तो यही बनारस में एक मास से बाबा रहे पड़े थे और जाने का संकल्प आया। पर क्या ये अनुभव है, ये क्यों ऐसे भगवान ने दिखा, ये उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद बाबा ने जो अनुभव किया एक तरह विनाश का, जिससे बाबा को वैराग आ गया कलयुगी दुनिया से, और दूसरी ओर उस सत्ययुगी दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार किया। तो वो सुंदर दुनिया आ रही है, ये कलयुगी दुनिया जा रही है, ये बाबा को इतना समझ में भी नहीं आया, क्योंकि बाबा तो भक्त थे, भक्ति करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, गुरु किए थे, तीर्थ किए थे, ये सब बातें कहाँ समझते थे बाबा। लेकिन एक बात इनको जरूर समझ में आ गई, वो थी कि अब ये सृष्टि बहुत समय नहीं चलेगी। तो बाबा को आया कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, इतनी बड़ी बिजनेस, इतने मेरे ग्राहक, सारे राजा महाराजा लोग मेरी दुकान में आते हैं, या मुझे मौका मिलता उनके पास जाने का, तो जरूर कुछ तो इसमें राज होगा जो ये दर्शन हमको यहाँ घर बैठे हुए। तो अब इसलिए बाबा इतना सिंपल बन गए, इतना सिंपल, एक धोती कुर्ता बस यही पहनते थे। घर वालों को छुट्टी पर भेजा था बाबा ने, और जब घर वाले वापस आए तो आश्चर्य खाने लगे, ये क्या, बाबा को क्या हो गया, इतना सिंपल कैसे हो गए, कहाँ उनका ठाट था, तो क्या हो गया समझ में नहीं आया। लेकिन बाबा हमेशा अपनी तपस्या में रहते थे, बाबा के पास लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। लेकिन अब चमत्कार क्या हुआ कि वो जो सफेद कपड़ों का दृश्य था, धोती कुर्ता सिंपल, वो बाबा पहनने लगे। लेकिन जो लोग बाबा के पास आते थे, वो बाबा का ये जो ड्रेस था वो बिल्कुल लुप्त हो जाता था, और उसकी जगह उनको श्री कृष्ण दिखाई देता था। लेकिन उसके पहले बाबा तो घर में चले गए, और घर में बाबा एकांत में रहने लगे, शांति का अनुभव करने लगे, दुनिया की निगाहों से दूर रहने लगे। तो कैसे अचानक एक दिन घर में बाबा को ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, तेजोमय है, शांत मूरत है, प्रेम मूरत है, शक्ति मूरत है, ये बाबा ने एक दृश्य देखा, वो प्रकाशमय रूप जैसे बाबा के सामने आया। और धीरे धीरे बाबा ने देखा वो प्रकाशमय स्वरूप उनके अंदर में प्रवेश कर गया, जैसे उनके अंदर आ गया, नजदीक आके उनमें प्रवेश हो गया। और उसी समय बाबा ने आकाशवाणी सुनी, कोई आकाश से दूर से कोई बात कर रहा है। बाबा के सामने तो विनाश का दृश्य था, वही बाबा देख रहे थे, एक नई दुनिया का दृश्य बाबा ने देखा था, अब ये तीसरा दृश्य बाबा ने देखा, वो परम धाम भी बाबा ने देखा, अब ये नया अनुभव कि वो ज्योति, वो परमात्मा की ज्योति कैसे अपने वास से निकल बाबा के शरीर में प्रवेश हो गई, ये बाबा ने देखा, प्रविष्ट हो गई। और प्रविष्ट होकर के एक ऐसा सुंदर वातावरण बन गया, इतना पवित्र चार्ज वातावरण बन गया, जो रिश्तेदार भी खुद समझ नहीं सके ये बाबा को क्या हो गया है। तो फिर थोड़ी समय के बाद उसी समय जो आकाशवाणी हुई, बाबा के मुख से एक आकाशवाणी हुई, शिव परमात्मा उनके तन में प्रवेश हुए और उनके मुख से आकाशवाणी की जो उनके रिश्तेदारों ने सुनी, खास करके बाबा की बहू बहुत बाबा के नजदीक थी और बाबा उनको बहुत सुंदर भी थी, बाबा उनको जेवरों से सजाते थे और महारानियों के महलों में भेजते थे। वो महारानियां इनके बहू के जेवर देखती थी और तुरंत पसंद कर लेती थी कि हमको ऐसे ही जेवर चाहिए हीरों के, तो वो साथ में होती थी बाबा के। तो जब बाबा ने ये ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो बाबा की आंखें तो बंद थी, लेकिन उस साक्षात्कार में बाबा सुनते रहे कि शिव परमात्मा कैसे उनके तन में प्रवेश होकर के उनके मुख से अपना परिचय देने लगे। और क्या परिचय दिया? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये मंत्र तो बाबा ने कभी पहले नहीं सुना था। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यही था कि शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मैं निज आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, ये मुख से आवाज निकलने लगी। फिर बाबा जब होश में आए, आंखें खोली, तो बाबा की आंखें इतनी लाल लाल चमक रही थी और सारा शरीर जैसे एकदम ताकत आ गई थी उस शरीर में, एकदम शांत चित हो गए थे, बिल्कुल निर्संकल्प अवस्था हो गई थी, एकदम न्यारे प्यारे हो गए, ये बाबा ने अनुभव किया। और फिर तो बस क्या था, चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे? जो भी बाबा को देखता था, अपने घर में ही बाबा दिखाते थे, घर में ऐसे नहीं बाहर रोड पर या दुकान में, अपने घर में ही बाबा देखता था कि वो जो सफेद वस्त्रधारी पोशाक थी वो बदल करके बाबा का चेहरे से लेकर नीचे तक वो एकदम क्या कहेंगे, श्री कृष्ण का रूप उनके सामने आके खड़ा हुआ, पीताम्बरधारी स्वरूप उनके सामने आके खड़ा हुआ और मोर मुकुट धारी मोहिनी रूप बनकर के बांसुरी बजा रहा है श्री कृष्ण, ऐसे बाबा से उनको आभास हुआ। अब ये भी एक क्रांति हो गई। कैसे क्रांति हो गई? जो घर बैठे भी लोगों को ये साक्षात्कार होने लगे। घर में जब रहते थे तो एक दिव्य साक्षात्कार करने लगे, कैसे श्री कृष्ण की दुनिया है, उसमें श्री कृष्ण रास कर रहे हैं। और कई ऐसे भी अनुभव करते थे कि जैसे श्री कृष्ण उनके जो साक्षात्कार है वो पीछे से खड़े हैं और उनके आगे ब्रह्मा बाबा है, पिताश्री ब्रह्मा बाबा जैसे सामने खड़े हैं सफेद वस्त्रधारी, ये देखते थे। तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, बाबा को भी समझ में नहीं आया, बस ये साक्षात्कार बाबा ने किए। बस फिर तो क्या था, उस साक्षात्कार में बाबा ने अनुभव किया जैसे बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं और अनेक आत्माओं को यही कह रहे हैं कि अभी हाँ मेरे पास तुमको आना है, अभी तुमको परम धाम आना है और तुमको ऐसा देवता बनना है। बस ये आकाशवाणी होने लगी। अब उसमें कई बहनें थी जिनको ये अनुभव हुए। सबसे पहले अनुभव किसको हुआ? ओम राधे, राधे इनका असली नाम था और इनके लौकिक पिता की डेथ हो गई थी, तो पिता की डेथ होने के बाद माँ बहुत रोती थी। अब और कोई न बेटा था न बेटी थी, बाकी केवल ये एक ही बेटी थी और ये बहुत भक्ति करती थी, श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत प्यासी होती थी, इसलिए वो सत्संग बहुत करती थी। तो उसी समय 1936 की ये बात है, कैसे इनको हम ओम राधे या मम्मा कहते हैं, ये अनेक सत्संगों में जाती थी और वहां ओम की ध्वनि करती थी और ओम की ध्वनि से उनको बहुत साक्षात्कार होते थे लोगों को। तो जब ये बाबा के पास आई, अपनी माँ को लेकर आई, क्योंकि माँ बहुत रोती थी पति के गुजरने के बाद, माँ बहुत रोती थी, तो बाबा के पास ये अपनी माँ को लेकर आई। वो माँ इनकी रोती हुई आई माँ बाबा के पास मिलने, और फिर एकदम हंसती हुई वापस गई। कहाँ लाखों की सभाएं हैं दुनिया में, बहुत लाखों हैं, तो उनमें से एक कोई महिला हो और वो अकेली उसी मकान में रह रही हो, ये जैसे बाबा ने इनका साक्षात्कार कराया, और कैसे बाबा ने देखा कि ये राधे, ओम राधे बन गई और ये लक्ष्मी बन गई, ये बाबा इनको देखते थे। वो खुद भी महसूस करती थी कि भगवान भी हमसे कुछ कराना चाहते हैं। तो क्या बाबा भी ओम की ध्वनि करते थे, और जैसे बाबा ओम की ध्वनि करते थे, इनको देखते थे, बस दृष्टि जाती थी और एकदम से वो ओम की ध्वनि निकल आती थी इनके मुख से भी, ये भी ओम की ध्वनि करते थे। और जो आते थे सत्संग में, वो दोनों को देखकर, बाबा को और मम्मा को, ऐसे अनुभव करते थे जैसे ये हमारे अलौकिक मात पिता है। मम्मा तो 16 साल की थी और बाबा तो 60 साल के थे, बहुत अंतर था, लेकिन ये अलौकिक मात पिता के रूप में अनुभव करने लगे जो भी सत्संगों में आते थे। तो बाबा इनको एक गीत लिखकर देते थे और ये अपने हारमोनियम पर या तबला पर या सितार पर उसका तर्ज निकालती थी, और तर्ज निकाल करके फिर वो भजन के रूप में गाती थी। तो बाबा को तो बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही अपनी ये इसकी माँ जो थी वो बहुत रोती थी क्योंकि पति का उसको दुख था, लेकिन माँ जब आई बाबा के पास, तो माँ ने ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया, बस केवल किया मात्र, उसी समय इनकी माँ को बाबा से कृष्ण के दर्शन होते थे, और कृष्ण को के दर्शन करके इतना हंसती थी, इतना हंसती थी, आती थी रोती हुई और जाती थी हंसते हंसते, इतना परिवर्तन उनके जीवन में आ जाता था। तो यहाँ तो मम्मा तो बहुत आगे बढ़ गई, तो एक और मम्मा का इतना वर्चस्व था सारे यज्ञ पर, और दूसरी ओर मम्मा इतनी निर्माण थी, इतनी नम्र थी। अगर मान लीजिए कोई चीज आई, अब एक एक फल आया तो एक एक फार करके उसका भी, और वो सब्जी बनाए या फ्रूट खाए, मानो इस प्रकार करती थी। अगर वो साक्षात्कार हुआ तो मम्मा ने तो बहुत साक्षात्कार, मम्मा ने एक भी साक्षात्कार वैसे किया नहीं, इनकी माँ ने किया। तो इनकी माँ को बुद्धि में था कि बस यही मेरे लिए भगवान है। अब ये तो बहुत मॉडर्न थी, बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की थी और बहुत अवार्ड देती थी, लेकिन बाबा ने इसको जो कहा वो करती थी। वो ओम की ध्वनि करती थी, इसमें से राधे का साक्षात्कार हुआ, वो गीत गाती थी तो भजन जो बनाते थे बाबा वो ये गाती थी, तो सभा बढ़ती गई बढ़ती गई, और ये हमारे अलौकिक मात पिता के रूप में बच्चों की पालना करने लगे। फिर दादी प्रकाशमणि जी आए, दादी प्रकाशमणि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही 38 साल तक, वो 1936 में बाबा के पास आई। इनको तो घर बैठे साक्षात्कार होने लगे, बाबा को कभी देखा नहीं था पर घर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। और ये इनके पिता ज्योतिषी थे, इनके पिता यही कहते थे कि मेरी बेटी जो है वो मीराबाई की तरह बनेगी, कृष्ण की भक्ति करेगी, कृष्ण की दुनिया में इनको जाना है, और गीता का बहुत सुंदर पाठ करती थी। और इनको भी ऐसे साक्षात्कार हुए तो इनके पिता ने कहा कि आप जाके देख के आओ क्या होता है वहाँ। और जैसे ये बाबा के सामने आई, बाबा से उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। मानो इस प्रकार से कई बहने भाई आए, बाबा को देखते ही बाबा से कृष्ण के दर्शन करने लगे। तो मुख्यतः उस समय दो क्रांतिकारी बातें हुई। पहली क्रांतिकारी बात थी जो साक्षात्कारों के, साक्षात्कार इतने होते थे जो लोग कहते थे उस समय कुल्फी बिकती थी, पैसे पैसे कुल्फी। तो बाबा तो पत्रकार जो थे वो अखबारों में डालते थे, जैसे पैसे पैसे कुल्फी वैसे पैसे पैसे साक्षात्कार। ओम मंडली में होता क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे। तो फिर तो बहुत लोग आने लगे, इतने आने लगे जो बाबा कहाँ बिठाए उनको वो भी समझ में नहीं आता था। और रोज बाबा सत्संग करते थे, गीता का पाठ करते थे। बाबा ने स्कूल बनवाया था जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, राज विद्या वो पढ़ते थे लेकिन साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ते थे। तो बाबा ने कैसे उसके लिए बहने मुकर्र की थी, टीचर्स बहने जो बच्चों को आध्यात्मिक बातें सिखाती थी। तो बहुत कुछ हो रहा था हैदराबाद सिंध में, लेकिन बाबा बिल्कुल उसी मस्ती में थे। अब उसी बीच एक तीसरी क्रांतिकारी बात हुई। पहली क्रांतिकारी बात हुई कि साक्षात्कार हुए, दूसरी क्रांतिकारी बात हुई जो माताएं बहने आई, स्त्रियां ज्यादा आई, पुरुष कम आए, स्त्रियों को ज्यादा साक्षात्कार होते थे और वो बाबा के पास आई और सीधा समर्पित हो जाती थी। और तीसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई, जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबको एक प्रतिज्ञा करवाई। प्रतिज्ञा क्या करवाई कि बहुत सुंदर प्रतिज्ञा, हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, ये प्रतिज्ञा की। अब जीवन को पवित्र और योगी बनाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी प्रतिज्ञा नहीं है। और बच्चों सहित सबने की, वो स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने भी कर दी। अब जब ये न्यूज बाहर शहर में गई तो इनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी या जो भी भाई बहन थे उनके रिश्तेदार, उनको तो आश्चर्य हुआ कि ये कैसे प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अभी तो इन बच्चों ने दुनिया ही कहाँ देखी है जो कैसे पवित्र बना सकते हैं। लेकिन बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति है और उसने मुझसे ही प्रतिज्ञा कराई कि तुम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओगे। तो हमारे साथ साथ सबने प्रतिज्ञा की है और प्रतिज्ञा करके हम परमात्मा के कार्य को संपन्न करेंगे। तो एक अलौकिक परिवार बन गया बाबा का, बहुत ही सुंदर अलौकिक परिवार। क्योंकि कई घरों से बहने आई बाबा के पास आके समर्पित हो गई और इस अलौकिक परिवार ने प्रतिज्ञा की हुई थी। तो परिवार बहुत बढ़ गया, मकान तो छोटे पड़ गए। तो बाबा फिर हैदराबाद सिंध से 1937 में कराची चले गए। हैदराबाद सिंध और कराची बहुत दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता था। कराची तो बहुत बड़ा शहर था, ताकि करीब 400 बहनों ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया बाबा को। तो बड़ा मकान चाहिए था, बहुत कुछ बड़ा स्थान चाहिए था, लेकिन कहाँ इतना बड़ा स्थान मिले जो 400 भाई बहने इकट्ठे रह सके। तो फिर छोटे छोटे मकानों में रहे, लेकिन भगवान को अपना कार्य कराना था सृष्टि के परिवर्तन का, और उसके लिए बहनों को निमित्त बनाया। रोज सवेरे ये बहने शॉर्ट्स और ये क्या बोलते, शर्ट एंड शॉर्ट्स, पैंट हाफ पैंट ये पहन करके सागर के किनारे जाते थे कराची में, जहां पर सागर के सामने बैठ करके योग तपस्या करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। तो कराची के क्लिफ्टन बीच पर समुद्र के किनारे जाते थे। और उसी बीच बाबा और मम्मा ये हमारे अलौकिक मात पिता बन करके बच्चों की पालना करते थे। मम्मा मानो वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, बाबा तो थे ही, लेकिन मम्मा ने सबकी पालना की, एक माँ के रूप में बच्चों की पालना की और 14 साल तपस्या की। 1937 से लेके 1950 तक तपस्या की, 14 साल। और इसी तपस्या के दौरान बहुत उनको साक्षात्कार हुए, क्योंकि अपना जीवन उन्होंने पवित्र और योगी बना लिया तो दुनिया की निगाहों से दूर थे। फिर 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन ये संस्था कराची में ही थी, वो तो स्थानांतरित नहीं हुई क्योंकि परमात्मा का अभी तक आदेश नहीं आया था। आदेश आए ना कि बच्चे अभी जाना है तो चलो तैयारी करें भी, तो आदेश ही नहीं था तो कहाँ जाना है वो भी कैसे निर्णय कर सके। लेकिन अपना बिस्तरा बोरी जरूर बांधा और ये निर्णय किया कि अभी भारत जाएंगे, भारत ही सोने की चिड़िया बनेगा। बाबा कहते थे भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत में ही स्वर्ग आएगा, ऐसे बाबा कहते थे। स्वर्ग की दुनिया के ऊपर नहीं है लेकिन भारत भूमि ही है, तो मानो बाबा ऐसे ऐसे अनुभव करते थे। और इसी के आधार पर करीब 300 जितनी बहनों ने अपना जो जीवन समर्पित किया वो सब मिल करके भारत में आए, बाबा मम्मा सहित। और भारत में वो भी कैसे आए, एक जहाज में। उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था सिंध का, उसने जहाज दिया कि आप भारत में जाओ और वहां ही आपके लिए अलग कार्यक्रम होगा। अब इतना बड़ा जहाज दिया, फिर जहाज में बैठ करके बाबा के संग आए और यहाँ माउंट आबू स्थान चुना तपस्या करने का। तो माउंट आबू में आकर के चारों ओर यहाँ घूमे, सब जगह गए, पर सब जगह क्या देखा, एकदम जंगली जंगल। पशु पक्षी केवल थे खूंखार, इसमें चीता शेर भालू ये सब होते थे, परंतु और जानवर भी होते थे जैसे अभी भी हैं। और उसी बीच इतनी जोर से आवाज होती थी शेर के गरजने की जो सब कांपते थे। लेकिन बाबा कहते थे बच्चे एक दिन आएगा जो सारा माउंट आबू आपका हो जाएगा, ये बाबा कहते थे। तो अभी हम देख रहे हैं जो बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। और ये 1936 की ट्रेन है, ट्रेन से आबू आते हुए। 1950 की ये ट्रेन है जब ट्रेनों में कोई रेलिंग नहीं होती थी, कितना देखो बाहर झांक करके देख रहे हैं, क्योंकि 14 साल तो खूब तपस्या की और 15 साल समझो, और फिर बाबा आबू रोड स्टेशन पर उतरे। तो बाबा और मम्मा ये दो हंसों का जोड़ा था जैसे, लेकिन एक आत्मा थी। किस प्रकार, जो बाबा कहते थे मम्मा मानती थी, जो मम्मा कहे वो बाबा मानते थे। तो अलौकिक मात पिता के रूप में थे और बहुत तपस्या करते थे, दूर दूर पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करते थे मम्मा और बाबा। तो मानो तपस्वी मूर्त बन करके खूब सेवा की और चमत्कार होने लगे, बहुत सारे चमत्कार, वो भी उस समय के चमत्कार थे। तो बाबा मम्मा ने सारी बागडोर संभाली और इस संस्था को एकदम शांति कुंड बना लिया, ताकि जो भी अंदर आए उनको शांति का अनुभव हो। बाहर तो हंगामा था, लेकिन उस हंगामे के बीच में ये शांति कुंड जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाया। और फिर तो बच्चे भी बाबा के साथ जाते थे, दिलवाड़ा मंदिर में जाते थे, अचलगढ़ गुरु शिखर, बड़े बड़े पहाड़ों पर प्रवेश करते थे, बड़े बड़े मानो जंगल के बीच में भी जाते थे, तपस्या करते थे, बहुत कुछ किया। और बाबा सदा कहते थे कि आपका एक एक अंग शीतल हो, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कहते हैं ना कमल माना कमल फूल सदृश, तो आपका एक एक अंग कमल जैसा होना चाहिए, पवित्र और योगी। तो सब ने प्रतिज्ञा की। अब जब सबने प्रतिज्ञा की तो विरोध हुआ, हैदराबाद सिंध में ही विरोध शुरू हुआ। ये कोर्ट का केस तो कराची में चला, लेकिन विरोध तो हैदराबाद सिंध से शुरू हुआ। तो जब बाबा को कहते थे, बाबा ये कैसा विरोध है, बाबा कहते थे कि नहीं बच्चे, ये विरोध मत समझो, ये आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। स्वर्ग का द्वार खुलेगा, अब कैसे खुलेगा ये तो कोई नहीं जानता था। बस फिर तो बाबा के साथ अनेक बहनें यहीं रहते थे, 385 बहनों में से दो चार को जैसे बाबा ने बाहर भेजा, सेवार्थ भेजा, बहुत भेजा, फिर मुम्मा जाने लगी, इस प्रकार माउंट आबू से बाहर जाने लगे और बाबा की सेवाएं होने लगी। तो मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि जी रहते थे, जहाँ जहाँ मम्मा जाते थे वहाँ दादी प्रकाशमणि उनके साथ रहते थे। तो मम्मा ने अपना देह त्याग किया 1965 में, मानो 66 मम्मा की आयु उस समय 46 साल की थी। 1916 में आपका जन्म हुआ और 65 में आपका देहांत हुआ। तो मानो 45-46 साल केवल आप जीवित रहे, लेकिन इन 45-46 सालों में मम्मा ने बहुत कुछ अनुभव किया, बिल्कुल माँ की जैसे पालना देती थी। और 24 जून 1965 को मम्मा ने अपना देह त्याग किया 46 वर्ष की उम्र में, 46-47 वर्ष की उम्र में आपने अपना देह त्याग किया। और फिर इनकी जगह दीदी मनमोहिनी जी आए। मनमोहिनी जी भी शुरू से ही समर्पित बुद्धि के थे। आपके आपके परिवार में से आपकी बहनें थी तो वो सब समर्पित हो गई, बेटियां सब समर्पित हो गई, इनकी माँ भी समर्पित हो गई, लेकिन पिता वो रहते थे अपने घर में। तो सब समर्पित हो गई, मानो दो बेटियां इनकी और इनकी माँ और दो बेटियां दूसरी दादी बना चाची की और ये 6 बहनें कजिन सिस्टर्स एक साथ आके समर्पित हुए। और ये बहुत धनी परिवार की थी। जसलोक हॉस्पिटल आता है बॉम्बे में, उसके उस मालिक के आप रिश्ते में थे, चाचा चाची थे वो। तो जसुमती लोकुमल इस नाम से वो जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में सिंधी लोगों ने खोला था, तो ये उसी परिवार की थी। तो फिर तो बाबा ट्रैवल करने लगे, मम्मा तो मधुबन में रहती थी, तो ये बाबा की ट्रैवलिंग दिखाई है। बाबा के पास भी परिवार के परिवार आते थे, ये सारा परिवार जैसे बाबा के सामने आया है। आप देख रहे हैं बाबा माता पिता के रूप में कितनी पालना कर रहे हैं। और उसी समय एक अलौकिक यात्रा भी निकाली गई, सब 20 मार्च करके पूरे शहर में जाते थे परमात्मा का संदेश देने के लिए, एक एग्जीबिशन भी बनाई गई थी। तो मानो बहुत कुछ हुआ, ये सब परमात्मा का कार्य सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी झांकी भी बाबा सजाते थे, सब कुमारियां उसमें बैठती थी। बाबा कहते थे 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या है, 100 ब्राह्मणों को खिलाओ और एक कन्या को खिलाओ बराबर है। और जो भी इनकी चीजें थी वो लीलाम कर ली या बेच दी, क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं इनका कपड़े कोई और पहनेगा। लेकिन ये बाबा ने यहाँ माउंट आबू उसके बाद बाबा बच्चों को मिलते रहते थे, बाबा भी जाते रहते थे और बाबा का प्यार सबको मिलता रहता था। और एक ही महामंत्र था, एक शिव परमात्मा को याद करो, सबका मालिक एक है, हम सभी आत्माएं भाई भाई है, एक पिता परमात्मा की संतान है। बाबा पत्र भी बहुत लिखते थे अपने बच्चों को, ये बाबा के सिंधी में पत्र होते थे और उस पर बहन एक हिंदी करती थी। और पांडव भवन आप कल होकर आए होंगे, ये ब्रह्मा बाबा का आदि स्थान है जहाँ बाबा रहते थे। ये बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा दिन के समय आकर के विश्राम करते थे, या किसी से मिलते थे, या पत्र लिखते थे। और इस झोपड़ी के आसपास बहुत सुंदर सा बगीचा है। और फिर ये हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में, जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे। और उस हिस्ट्री हॉल में अभी जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स है, वो हिस्ट्री हॉल में अपनी क्लास करते हैं। और उसके साथ साथ ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा अपने बच्चों के साथ मिलते थे। और तो मानो 18 जनवरी 1969 को 93 वर्ष की उम्र में बाबा ने अपना देह त्याग किया। तब बाबा की आयु 93 वर्ष की थी। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, व्यक्त शरीर को त्याग किया और अव्यक्त शरीर को धारण किया। तो 18 जनवरी 1969 को बाबा ने अपना पार्थिव देह त्याग किया। और इसी स्थान पर पांडव भवन में हजारों भाई बहने 18 जनवरी पर आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। तो ये जो शांति स्तंभ है, वहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा का तपस्या स्थान भी था। बाबा वहाँ तपस्या भी करते थे, बाबा वहाँ बैडमिंटन खेल भी खेलते थे, बाबा वहाँ क्रिकेट भी खेलते थे, बहुत कुछ वहाँ। कल आप गए होंगे, देखा होगा जहाँ शांति स्तंभ है। और 18 जनवरी को बाबा ने जो देह त्याग किया, इसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये चार धाम ब्रह्मा बाबा के यादगार के स्थान है, एक शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी और उसके साथ साथ बाबा का कमरा। ये चार धाम ब्रह्मा बाबा के यादगार स्थान है। सभी जगह गए कल आप, सब जगह होकर के आए, तो आपने देखा होगा कि कितना वहाँ शांति का माहौल है। पर कल नीचे से भी बहुत लोग आए थे, क्योंकि शांति वन में 5000 लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, तो वो भी कल माउंट आबू घूमने के लिए आए थे। आप भी चारों ओर गए होंगे। और दादी उस ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद दादी प्रकाशमणि जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने। दीदी मनमोहिनी भी बाबा के दादी के साथ ही थे, और दोनों ने मिल करके कैसे इस कार्य को संभाला। तो 1969 से लेके 2007 तक 38 वर्षों तक दादी प्रकाशमणि ने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, गुरु नहीं, गुरु तो एक सतगुरु परमात्मा ही है, यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा संभाला। दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी हम कहते थे, दीदी दादी, दादी माना बहन। जैसे हिंदी भाषा में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, बड़ी बहन को। तो दीदी और दादी दोनों ने मिल करके इस विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया। और उनके साथ अन्य कई दादियां थी जो वरिष्ठ बहनें शुरू शुरू में समर्पित हुई, तो वो सब भी मिल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चलाया। और उसके बाद विदेशों में हमारी ब्रांचेस खुली। 1972 में हमारी पहली ब्रांच लंदन में खुली, और वहाँ से कुछ भाई बहने, विदेश के भाई बहने यहाँ माउंट आबू आए। 1983 में पांडव भवन के सामने जो ओम शांति भवन बना, वो भी देखा होगा आपने, जहाँ 3000 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ हमारी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, चारों तरफ से लोग आते रहे। एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन वहाँ हुआ, जहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस आदि आदि कई तीर्थ स्थानों से साधु महात्माएं, महामंडलेश्वर जी पधारे थे। तो ये विश्व शांति सम्मेलन भी हुए, कई राजनेताएं पधारे, तो वो तो वह सेवा हुई। और ये जो ज्ञान सरोवर है, इसकी जमीन 1991 में ली गई थी। ये बहुत बंजर जमीन थी, एकदम बंजर जमीन। और कैसे इस बंजर जमीन में जो थोड़े बहुत पेड़ थे, पहाड़ था, उस कहीं भी कोई भी तोड़ फोड़ नहीं किया, कोई पेड़ को काटा नहीं, किसी पहाड़ को खत्म नहीं किया, छोटे छोटे ये सब को मेंटेन किया है। और इसी के आधार से इतना सुंदर ये ज्ञान सरोवर परिसर बना है, जहाँ पर इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए सब चीज का यूज किया है। आप देखेंगे बिल्डिंग के अंदर ही पेड़ है, क्योंकि वो पेड़ को काटना नहीं था, बस ये लक्ष्य था। और ये कितना सुंदर वातावरण, जहाँ पर हमारे अलग अलग विंग्स के कार्यक्रम होते हैं, और 91 में ही माउंट आबू में ही अपना ग्लोबल हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ, जहाँ 50% जो स्टाफ है वो समर्पित भाई बहनों के रूप में है, और गांव-गांव में जाकर के सेवाएं कर रहे हैं, और अलग अलग पैथीज वहाँ चलती है, नेचुरोपैथी भी है, तो आयुर्वेदा भी है, तो होम्योपैथी भी है, फिजियोथेरेपी है, ये सारे पैथीज और थेरेपीज वहाँ बहुत सेवाएं दे रही है, और गांव-गांव के लोग आते हैं। अभी तो माउंट आबू के अलावा नीचे भी आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ भी अपना बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, बड़ा आई हॉस्पिटल है, और ये सब कई संस्थाओं के सहयोग से ये कार्य चलता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ओ भैया ये बंद हो गया, आपका बिजली नहीं चल रही क्या? खुल निकल गया, देखो आपने डाला नहीं होगा बैटरी ये चार। तो आपने इसमें तो बैटरी तो है ही नहीं,
चार्ज किया।
अच्छा चार्ज किया, अच्छा वो दूसरा है, देखो चालू करो, कभी अपने आप बंद हो गया तो आएगा। तो इसी प्रकार ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रहा, हमारे जैसे हजारों भाई बहने इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, आप जैसे लाखों परिवार हमारे विभिन्न सेवा केंद्रों पर नियमित विद्यार्थी के रूप में आते हैं, जहां ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग और दिव्य गुणों की धारणा, और जीवन में कैसे हम सेवाएं करें, क्योंकि जब यहाँ लोग देखते हैं, जब लोग देखते हैं कि इतना सारा इतना बड़ा कारोबार है, तो कई पूछते आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है, या कोई फीस तो उस प्रकार से है नहीं कि इतना फीस आपको देना है, इतना चंदा देना है या डोनेशन देना है, ये तो एक ईश्वरीय परिवार है, जैसे परिवार में भाई बहने ही मिल करके परिवार को चलाते हैं, वैसे ही ये ईश्वरीय परिवार में हम सब अपने तन मन धन से सेवाएं करते हैं, और जो यहाँ लाभ लेते हैं वो अपनी यथा योग यथा शक्ति सेवाएं देते हैं, जिससे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलता है। और माउंट आबू से नीचे जो तलहटी है, जहाँ से माउंट आबू पहाड़ शुरू होता है, वहाँ अपना बहुत बड़ा परिसर है, जिसको शांति वन कहते हैं, वो भी देख कर आए होंगे, देखा आपने या जाके देखेंगे? जी जाएंगे, आज जाएंगे तो वो भी आप देखना, भोजन करके आप जाएंगे, तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल है, 20,000 लोग इस हॉल में बैठ सकते हैं, वो डायमंड ईयर 96 में बन के तैयार हुआ था, जब 60 साल इस संस्था के हुए थे, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमारे उसमें होते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में 85 साल की उम्र में अपना देह त्याग किया, और दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में शांति वन में ही एक बहुत बड़ी स्मारक उनका बना है, जिनको हम प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और यही उनकी अंतिम संस्कार किए गए थे आश्रम के अंदर ही, तो वो भी आप देखेंगे जरूर। वर्तमान समय हमारी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी हैं, और दादी जानकी जी 102 साल के हैं, ये 20 साल के थे जब आप संस्था से जुड़े, और अभी 82 साल हो चुके हैं, तो 102 साल के हैं, काफी बुजुर्ग हैं, अभी तो शायद पता नहीं अहमदाबाद गए थे, वापस आए या नहीं मालूम, लेकिन दादी जानकी जी ने भी बहुत सेवाएं दी। आप लंदन में रह करके सारे विश्व की सेवाएं की, अनेक बार विश्व भ्रमण भी किया, और यहाँ नीचे शांतिवन में हमारी कुमारियों की के प्रशिक्षण होते रहते हैं, तो वो भी कार्य संभालते रहे, और लाखों एक एक लाख की सभा होती थी जहाँ दादी जानकी जी भाषण करते थे, और दादी जानकी के साथ सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी है। आप दिल्ली में रहते थे पहले, और दिल्ली में दिल्ली के जो हमारे सेंटर्स हैं उनका प्रशासन करते थे, फिर तो आप माउंट आबू में ही आए, और दोनों ही दादी जानकी और दादी हृदय मोहिनी जी इस विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में हैं, और एक तीसरी दादी भी है दादी रत्न मोहिनी जी, तो वो तो नीचे ही है शांतिवन में। तो इनकी यह विशेषता है दादी हृदय मोहिनी जी की कि आप के अंदर ट्रांस की बहुत का पार्ट है, आप ध्यान में जाते हैं, और कैसे शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रवेश होते हैं और वाणी चलाते, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, और वो अव्यक्त बाप दादा का कार्यक्रम हम लोगों का बीच बीच में चलता ही रहता है। हम लोग उसको रिले भी करते हैं चारों तरफ अपने पीस ऑफ माइंड चैनल में। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, देखा किसने देखा है? हाँ, तो थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, लेकिन अवश्य ऐसा और अनुभव करने के लिए आपको नियमित रूप से स्टूडेंट बन करके सेवा केंद्रों पर जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी, हमारे और नियमों का भी पालन करना होगा। अभी तो आप मेहमान बन के आए हो, लेकिन फिर दोबारा आएंगे तो इस ईश्वरीय परिवार का एक सदस्य बन के आएंगे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी बन के आएंगे। अभी मेहमान मेहमान बनना और विद्यार्थी रूप में या पढ़ाई करना या मेंबर बन जाना परिवार का, वो तो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए अब दोबारा जब आएंगे तो परिवार का सदस्य और उस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बन के जरूर आना, तो आप भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। परंतु उसके लिए थोड़े नियम हैं, रोज जाएं, हम कहते हैं यहाँ 5 खोटे पैसे दान करके जाओ और 1 आना लेकर के जाओ। 5 खोटे पैसे माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दान करके जाओ और 1 वायदा करके जाओ कि हम सेवा केंद्र पर जाकर के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे, परमात्मा की वाणी सुनेंगे, और अपने जीवन में धारण करके सच्चा योगी तो आत्मा बन करके, ज्ञानी तो आत्मा बन करके हम इस संसार में रहेंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, यानी कि घर गृहस्थी छोड़ करके यहाँ बैठ जाना है, लेकिन अपने परिवार में रहते हुए भी अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाना, यही वास्तव में हमारा लक्ष्य है, और इसके आधार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर एक सुंदर लक्ष्य नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने, मानव देव बने, ये संसार एक सतयुग की दुनिया बने, यही लक्ष्य लेकर के हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, जीवन में धारणाएं करते हैं और अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं। तो ये है संक्षिप्त में इस संस्था का परिचय जो हम सबने अभी सुना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 82 वर्षों की यात्रा आपको 82 मिनटों में कराई, ऐसे ही कहेंगे। चलिए ओम शांति।